कथाम प्रसंगा मम वीर्य संविदो, भगवान के वीर्य शौर्य लीला नाम गुरुनिदाजी की चर्चा होती ही है, ये उद्देश्य ही होता है धाम में पधारने का और पधार कर महिमा भगवान के महिमा का गुणानुवर्णन स्मरण चिंतन। तो इस समागम सत्संग के आयोजन से वो एक आकांक्षा थी, वो भी यह पूर्ण हो रही है। पंडितपुर धाम की, वैसे भक्त जब आते हैं रुक्मिणी के भक्त या रुक्मिणी द्वारकाधीश के भक्त और भी भक्त आते हैं, उनका आना अलग होता है, उनके भाव अलग होते हैं। सुख संपत्ति घर आवे कहने वाले, ऐसी प्रार्थना लेके आने वाले भी कुछ कम नहीं होते, अधिकतर वैसे ही होते हैं। देवी देवता के पुजारी होते हैं। ये धाम तो रुक्मिणी मैया का धाम है, यहां पर कृष्ण बलराम पधारे हैं, ये हरि धाम है, ये द्वारका धाम है। द्वारका से संबंध है इस धाम का, द्वारका से आए श्री कृष्ण और बलराम भी साथ में आए, तो ये देवी धाम नहीं है। एक देवी धाम, फिर महेश धाम, फिर हरि धाम, साकेत धाम, फिर गोलोक धाम, तो सबसे निकृष्ट तो देवी धाम है। आपको समझ में आना चाहिए, वैसे इसको कॉस्मोलॉजी जो अंग्रेजी जानते हैं लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं या एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, या हमारे शास्त्र में इसको जिसको खगोल कहा है। एक तो भूगोल से तो आप परिचित हो, भूगोल महाराष्ट्र एवडे जिले एवडे डोंगर पर्वत ये सब, ये भूगोल हुआ। ये खगोल, ख मतलब आकाश और वो भी गोल है, पृथ्वी भी गोल है और ब्रह्मांड भी कैसा है गोल है, तो खगोल सारे ब्रह्मांड का। 14 भुवन माजे या चर्चा हुई, तो 14 भुवन तो सारे ब्रह्मांड भरा हुआ है 14 भुवनों से। वैसे आधा ब्रह्मांड 14 भुवनों से भरा हुआ है, आधा ब्रह्मांड तो गर्भदक्ष विष्णु के शरीर से निकलने वाले जल से उसे सागर बन गया, इसमें पहुड़े हुए हैं हमारे गर्भदक्षय विष्णु। अभी तो सारा खगोल की चर्चा नहीं होगी, लेकिन हमको ज्ञान होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ज्ञान दिए है, अगर ज्ञान किसी को है तो वैष्णव को ज्ञान होता है, अज्ञानी नहीं होते वैष्णव, या केवल भावुक नहीं होते, वो ज्ञानी होते हैं। सत्य का तथ्य का उनको पता होता है, ये शास्त्र के उनको ज्यादा पता नहीं है, अपने मनोधर्म से कल्पना से कुछ मान लेते हैं समझ लेते हैं। लेकिन अगर कोई ज्ञान है तो वैष्णव का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, गीता भागवत, भागवत में इस खगोल का। तो ये जो ब्रह्मांड है ये देवी धाम, फिर ऊपर जाते रहो महेश शिव जी का धाम, फिर वैकुंठ धाम। तुकाराम महाराज उठ गेले वैकुंठला, स्वर्गात गेले का तुम्हाला जायचं का नाही, वेडे के खोळे तुम्ही, सर्व जग चाललंय स्वर्गामध्ये, स्वर्ग से भी ऊपर वैकुंठ धाम, फिर साकेत अयोध्या वहां भी है, फिर गोलोक धाम। तो गोलोक का नामनी निज धामनी, वैसे ये गोलोक का कौंडिन्यपुर गोलोक में है, क्योंकि गोलोक में ही उसके विभाजन है। गोलोक में वृंदावन है, गोलोक में मथुरा है, गोलोक में द्वारका है, और गोलोक में नवद्वीप मायापुर है। ये सब आपको पता होना चाहिए, आप या तो दीक्षित हो या दीक्षार्थी हो, तो ये सब ज्ञान अर्जन अनिवार्य है। तो इस धाम में जो गोलोक है या द्वारिका है, रुक्मिणी द्वारकाधीश का ये धाम है, बलराम भी जहाँ पधारे, इस धाम को प्रकाशित, उसका प्राकट्य और उसका प्रकाशन का प्रयास गौड़ीय वैष्णव हरे कृष्ण भक्त यहाँ कर रहे हैं। तो गौड़ीय वैष्णव यहाँ आएंगे, जैसे आप वैष्णव हो, इतना आपको पता है कि नहीं? हाँ, हमको पता ही नहीं था कि हम वैष्णव है। वैष्णव क्या होता है? गर्व से कहो हम हिंदू है, वो तो पता है सबको। वैष्णव तो वैष्णव जब जो आए यहाँ आएंगे, जो वैष्णव विष्णु को जानते हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराध्यते परम, तो वैष्णव विष्णु परम है, या विष्णु पांडुरंग श्री कृष्ण श्री राम, ये सब विष्णु तत्व है। इसको विष्णु तत्व कहते हैं, एक तत्व विष्णु तत्व। तो वैष्णव यहाँ आएंगे, जैसे आप आए हो, तो ये धाम का महिमा और बढ़ेगा, लोग समझेंगे। अब तक जानते नहीं है कौंडिन्यपुर को, भली भांति समझते नहीं, यहाँ तक कि रुक्मिणी का जो जन्म दिवस है यहाँ नहीं मनाया जाता। जहाँ रुक्मिणी ने जन्म लिया, उसी रुक्मिणी के जन्म स्थान में रुक्मिणी का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता। तो फिर और फिर कहना ही क्या। और यह जब उत्सव होते तो यह तमाशा हुआ करता था हमारे अक्रूर प्रभु जी के प्रयास से, वो तमाशा के स्थान पर अब या भगवान की रास लीला का भी यह प्रदर्शन जब उत्सव होता है अब कार्तिक के बाद तुरंत बाद, तो कुछ परिवर्तन का क्रांति का प्रयास यहाँ हो रहा है। केवल मंदिर निर्माण ही नहीं हो रहा है, इसके साथ सभी जो सिद्धांत है, भक्ति भाव है, यहाँ के लीला का प्रकाशन है, ये तो अधिक महत्वपूर्ण है। मंदिर तो बनते रहते हैं, और एक मंदिर हुआ तो क्या हुआ? तो भविष्य में और भी भक्त आते रहेंगे, अधिक संख्या में आते रहेंगे। तो ये जो विशेष सत्संग समागम आयोजन कौंडिन्यपुर धाम के हो रहा है, ये हमारे लिए भाग्य का विषय है। धाम वैसे वे स्थान है, आश्रय स्थान, नामाश्रय करी जतने तुमी, नामाश्रय करे जतन, जतन म्हणजे काय? जपून ठेवा, म्हणजे जपून ठेवा। हर नामाश्रय प्राप्त तो हुआ है, अब क्या करो? उसको संभाल के रखो। इस नाम का जो आश्रय है, इस नामाश्रय की रक्षा करो। इसके भी कई शत्रु है, यस। ओ वाह, तो जैसे नाम आश्रय है तो धाम आश्रय भी है। नाम आश्रय धाम आश्रय, या नाम आश्रय लिया तो फिर धाम आश्रय। जैसे नाम से ही, जैसे मैं कभी कभी कहते रहता हूं, नाम ही हमें धाम तक पहुंचाएगा। नाम से धाम तक, नाम से, नाम से, नाम से। तो आपने, आपको नाम प्राप्त हुआ है, इसीलिए आप कहाँ तक पहुंचे? धाम तक पहुंचे, नहीं तो आपको यहां पहुंचना नहीं था, या पहुंचते भी तो फिर शेरावाली, अगर आप जानते हो क्या शेरावाली होती है, उत्तर प्रदेश में काफी चला, आपने सुना हो शेरा, शेर पर जो, शेर जिसका वाहन है वो कौन हो गई? शेरावाली हो गई। तो धाम आश्रय, अच्छा धाम मतलब ही जहां जीव को आश्रय प्राप्त होता है, आश्रय स्थान ही धाम है, रेफ्यूज अंग्रेजी में कहते रेफ्यूज, रेफ्यूजीज होते हैं ना, रेफ्यूजीज, जैसे बंगाल बांग्लादेश के रेफ्यूजीज आए कुछ 20-25 साल पहले, कहाँ आए? गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में आए, और भी कहीं गए होंगे, लेकिन तो वहाँ एक 100 गांव तो वहाँ बांग्लादेश से आए हुए, उनको कहते रेफ्यूजीज। तो वह आश्रय नहीं था, वह जीवन कुछ खतरे में था, तो वह ऐसा स्थान फिर उनको मिला जहाँ आश्रय प्राप्त हुआ। जो अनाश्रित थे वे क्या हुए? आश्रित हुए। तो इस संसार में उसे जीव को कोई आश्रय नहीं है, तो धाम में आना, धाम में आने से उस भूले भटके जीव को क्या होता है? आश्रय प्राप्त होता है। जैसे सागर के बीच में, महासागर के बीच में क्या होते? द्वीप होते, द्वीप आइलैंड्स, उनको ओएसिस कहते हैं। तो समुद्र में तो भयानक होता है समुद्र में रहना, और कितना दुर्गम और पथ दुरंत पारम, समुद्र को पार करना, तो वहां की कैसी लहरें तरंगे, तो जान खतरे में होती है समुद्र में रहना। लेकिन ऐसा व्यक्ति फिर आगे उसको द्वीप अगर दिखाई देता, आ गया सीर, और फिर जब वहां पहुंचता है तो फिर सुरक्षित स्वयं को फील करता है। तो सभी ओर संसार क्या है? संसार भी एक सागर है, भवसागर है, और इस भवसागर के बीच में क्या है? वृंदावन है, ये ओएसिस हुआ, यह द्वीप हुआ, यह आश्रय स्थान हुआ, रेफ्यूजीज, जैसे बांग्लादेश के यहां आ गए, उनको आश्रय मिला। तो जीव को आश्रय मिलने वाला, देने वाला जो स्थान है वे धाम होते हैं, ऐसे भगवान ने व्यवस्था की है। और वहां जहां भगवान का निवास स्थान, लीला स्थली, तो ये सत्संग कौंडिन्यपुर धाम में हो रहा है, ये भाग्य का विषय है। या भगवान रहते हैं, या भगवान रहते कि नहीं रहते थे? नहीं रहते है, रुक्मिणी आज भी यहां है, उस समय प्रकट लीला थी, अब कौन सी लीला यहां हो रही है? प्रकट के विपरीत क्या होता है? अप्रकट। लीला के दो प्रकार, प्रकट लीला, अप्रकट मतलब पर्दे के पीछे, अप्रकट मतलब पर्दे के पीछे लीला आज भी हो रही है यहां, यही पर, इसी धाम में भगवान के, रुक्मिणी के लीला की यह नित्य स्थली है। तो यहां, यहां से भगवान दूर नहीं है, हम लोग यहां पर कुछ कीर्तन जप करने के लिए भी आए हैं। हम लोग जब कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो कौन सुनता है उसको? हाँ, कोई धीरे धीरे कह रहे भगवान शायद सुनते होंगे। यस, कभी सोचा था आपने? हम तो सुनते हैं श्रवणम, क्योंकि हरे कृष्ण जब हमने कहा तो हम कृष्ण को पुकारते हैं। हरे कृष्ण कहना मतलब इस आगे के व्यक्ति को हम कहते अरे ओ अहो अहो, तो वो सामने है तो उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम अहो कहेंगे, सर कहेंगे या कुछ नाम लेंगे। ओ पाटिल, ओ साहेब, ओ अजी भाई, ओ मामा, ताकापूर्ति कामापूर्ता मामा, ताकापूर्ति अजी भाई,
ओ अजी भाई, ओ अजी भाई,
हम पुकारते हैं अजी भाई को, पुकारते हैं मामा को, पुकारते हैं। जब मामा सामने है, अजी सामने, अजी भाई सामने है, तो हम लोग हरे कृष्ण कहते हैं। मतलब कृष्ण है वहाँ सर्वत्र है, हृदय में भी है। तो भगवान को पुकारते हैं तो केवल हम ही नहीं सुनते हरे कृष्ण को। क्या एक्सपेक्टेशन क्या है, हम क्या अपेक्षा है कि भगवान भी इस नाम को सुने, ये भी समझ होनी चाहिए, हमको समझना चाहिए। हम भगवान को पुकार रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण को पुकार रहे, संबोधन है यहाँ। महामंत्र में से सारे जो मंत्र है, सारे जो नाम है, कितने नाम है, 16 नाम है। नाम तो तीन ही है, हरे कृष्ण राम, लेकिन तो अब इसको 16 नाम कहते, 16 नाम। अक्षर कितने हैं, अक्षर तो 16 नहीं है, नाम 16 है, अक्षर कितने हैं, 32 अक्षर। तो ये सारे के सारे संबोधन है। अगर संबोधन नहीं होता तो फिर हरा होता, लेकिन हरा का होगा हरे, इसलिए क्या है, संबोधन है। सीता रानी है, सीता कौन है, रानी है, लेकिन सीता को जब पुकारना है तो क्या कहोगे आप, सीते कहोगे, राम के सीते, राम पुकार रहे थे ना, जब पुकारना हो तो सीते गीते सब राधे हरे होता है, इसलिए पुकार। तो भगवान हमारे नाम को सुने, हमारे या हमने उच्चारित किया हुआ उन्हीं का नाम है, उनको सुनाते हैं हम। तो वैसे तो भगवान, अगर भगवान धाम में निवास करते हैं, हम उस धाम में आ गए, हमने यहाँ भगवान का नाम लिया, तो भगवान सुनेंगे कि नहीं, क्योंकि यही यही पर है भगवान। कभी कभी भक्त कहते हैं भगवान के धाम में आना और जप करना, भगवान को पुकारना, मतलब ये क्या हुआ, लोकल कॉल हुआ, लोकल कॉल। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन या जप, प्रभुपाद भी कहा करते थे, ये क्या है, भगवान का टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर, हरे कृष्ण। अब आप फोन करते समय कुछ सो के आप फोन कर सकते हो, मतलब लेट गए लेकिन सोए नहीं तो बात कर सकते हैं, सोए है तो बात होगी, फोन तो रखा है लेकिन, तो कुछ लोग सो भी गए, अभी कुछ लोग सो गए। और साथ ही साथ जब जब करते करते भी हम लोग, मतलब फोन बंद हुआ, ये भी अपराध है। मतलब ना आपका पुकार, ना भगवान का पुकार, भगवान से बात हो रही थी, भगवान से डायलॉग होता है, संवाद होता है, होना चाहिए। आपने भगवान को पुकारा तो भगवान चले आए, आपने उनका ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन फिर आपने आपने बात बंद कर दी, आप सो गए। व्हाट हैपन, मेरी अपनी रास क्रीड़ा बंद करके मैं फोन अटेंड कर रहा था, और नाउ तो धाम में आने का लाभ कि भगवान का धाम, भगवान का निवास है। तो वो जो हमारा कॉल है, क्लियर कॉल भी होगा, क्योंकि जिस पार्टी से बात करनी है तो वो पार्टी दूर नहीं है। अगर इंटरनेशनल कॉल होगा तो हेलो 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 करते करते बोलो बोलो हेलो हेलो, उसी में कौन बात कर, हु इज स्पीकिंग, पता ही नहीं चला, ऐसा कनेक्शन। लेकिन लोकल कॉल है तो फिर कॉल थोड़ा क्लियर होता है, और लोकल कॉल सस्ते भी होते हैं, फिर आपको दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। बिल बिल और दिल का संबंध है, बिल बढ़ेगा तो फिर दिल छोटा करके बोलना पड़ता है, क्योंकि बिल की कोई चिंता नहीं तो फिर दिल खोल के बोलते रहो। तो भगवान के धाम में इसीलिए भी हम आए हैं, यहाँ हमारा कॉल हमारा संपर्क थोड़ा और आसान हो इस धाम में आते हम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे विदर्भ के भक्त यहाँ पधारे हैं, जलगांव जिला विदर्भ की मराठवाड़ा खानदेश खान कुंता खान अफजल खान खान देश ऐसा कुछ होगा, इसलिए खान नाम आ गया आई थिंक सो। तो कुछ खानदेश के भी है अधिकतर, लेकिन वो पड़ोस नहीं है विदर्भ, विदर्भ के बगल तो अधिकतर विदर्भ विदर्भ प्रदेश के भक्त पधारे हैं। एक समय ये कौंडीन कुंडीन भागवत में कहा कुंडीन, अभी कौंडीन्यपुर ऐसा नाम, ये राजधानी रही कैपिटल सारे विदर्भ की। विदर्भ बहुत प्रसिद्ध देश, भागवत में कई स्थानों पर विदर्भ का नाम आया, सुखदेव गोस्वामी कई बार विदर्भ का जिक्र किए उल्लेख किए, अति प्राचीन या नित्य धाम है ये। तो विदर्भ में इसका विदर्भ की राजधानी कैपिटल, विदर्भ में जन्म हुआ, इसी स्थान पर जन्म हुआ रुक्मिणी का, इसीलिए रुक्मिणी का एक नाम क्या है वैदर्भी, विदर्भ में जन्मी इसीलिए वैदर्भी। अच्छे हैं छः और पांच सात। तो ये दो जो दिवस है विश्व हरि नाम महोत्सव मनाया जा रहा है विश्व भर में, इसीलिए इसका इसीलिए भी और ही इसका नाम क्या है विश्व हरि नाम उत्सव। तो ये दो दिन अंतिम दिन है इस उत्सव के, शायद 28 तारीख को प्रारंभ हुआ ये उत्सव, और ये हरे कृष्ण आंदोलन इस्कॉन हम लोग कई सालों से प्रभुपाद के जन्म शताब्दी के समय से इसको मना रहे हैं। पहले तो एक दिवस चलता था उत्सव, अब तो इसने थोड़ा आकार इसका विश्व रूप धारण कर रहा है, विशाल हो रहा है ये उत्सव, या उसका आकार दिन की संख्या भी बढ़ चुकी है। तो ये उत्सव जो हम मना रहे हैं, हमारा जो उत्सव या दो दिवसीय उत्सव, ये उस विश्व हरि नाम उत्सव के अंतर्गत ही है। तो वो हरि नाम विश्व हरि नाम महोत्सव, तो हमारा भी यहाँ हरि नाम ही अधिकतर हरि नाम की टॉपिक होगा। तो इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि 1965 में श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए पहली बार, अकेले गए, तो साथ में ऐसे धन के दृष्टि से देखा जाए तो प्रभुपाद के पास कोई धन से था नहीं। श्रील प्रभुपाद जब वहाँ पहुँचे, न्यूयॉर्क में पहुँचे, उनके पास $5 बचे थे, कितने वहाँ तो 5 मिनट भी व्यक्ति जी नहीं सकता, या 5 घंटे $5 में कहा न्यूयॉर्क में इतने महंगा जीवन वहाँ। तो उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि प्रभुपाद जब उनका आगमन हुआ न्यूयॉर्क में 1965 की बात है, उम्र चल रही थी 69 वर्ष के प्रभुपाद थे, और कोई धन राशि नहीं थी और न तो कोई मित्र थे। हम जब यहाँ पधारे तो आपने मतलब बैंड बाजे के साथ स्वागत भी किया, बहुत कुछ किया आपने, लेकिन प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में पहुँचे तो वहाँ स्वागत के लिए कोई नहीं था। प्रभुपाद जब उस जलदूत नामक बोट से उतरे, एक कृष्णदूत जलदूत बोट में बैठ के, राजदूत होते ना राजदूत, राजदूत मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एम्बेसडर्स कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एम्बेसडर रहे, किस जगत के एम्बेसडर, उस जगत के ऊपर वाले जगत के एम्बेसडर प्रभुपाद, आध्यात्मिक जगत के राजदूत, जलदूत नामक बोट में बैठ के लगभग या एक महीने से अधिक दिन उन्होंने यात्रा की। जब वहाँ उतरे तो प्रभुपाद ने अपने डायरी में लिखा है कि प्रभुपाद को ये पता नहीं था कि अब मैं उतर तो गया न्यूयॉर्क में तो पहुँच गया, लेकिन अब मुझे जाना कहाँ, मुझे दाहिने मुड़ना चाहिए बाएं मुड़ना, कोई क्लू नहीं था कहाँ जाना है, कोई नहीं था स्वागत के लिए, या कोई होटल बुकिंग नहीं था, आप यहाँ पधारे तो आपके लिए कुछ होटलों में आपकी व्यवस्था हुई है, कुछ वक्तों की या कहीं ना कहीं हुई है व्यवस्था, लेकिन तब तो ऐसा ऐसी स्थिति ऐसी परिस्थिति में प्रभुपाद वहाँ पधारे, तो नो फ्रेंड्स नो मनी, लेकिन वैसे प्रभुपाद के फ्रेंड्स कौन फ्रेंड थे मैंने कह भी दिया, भाग ऐसा कुछ आया निकला, कौन थे उनके फ्रेंड, भगवान फ्रेंड, इसीलिए थोड़े बोट में कुछ सी सिकनेस वगैरह चल रही थी प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद वो भी नोट किए थे अपने दैनंदिनी अपने डायरी में। प्रभुपाद उस बोट के भगवान बन गए, उस नौका के चालक नावाड़ी, ऐसा भी अनुभव किया प्रभुपाद। फिर उस समय से बचा हुआ जो उनका सफर था बड़ा सुचारू ढंग से हुआ, उसके पहले बोट बड़ी डामाडोल हो रही थी पैसिफिक महासागर में, लेकिन एक समय भगवान ने चार्ज लिया उस बोट का, ऐसा प्रभुपाद ने अनुभव किया, स्वप्न देखा। तो फ्रेंड तो भगवान थे, और जहाँ तक धन राशि की बात है तो प्रभुपाद निर्धन थे, कोई धन था उनके पास, था कि नहीं पहले पता लगे, था कि नहीं था कुछ, हाँ था, कैसा था, कौन सा धन लेके गए प्रभुपाद, वेरी गुड, हरि नाम धन लेके, गोलोक एव प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नाम, भगवान के धाम का धन, उसकी कुछ अधिक कीमत होगी, उसकी कुछ अधिक मूल्य होगा, भगवान के धाम का धन वो कौन सा है, हरिनाम संकीर्तन, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, उस धन को लेके प्रभुपाद न्यूयॉर्क पहुंचे, और उस धन का श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, वितरण किया, और उस धन की प्राप्ति से लोग जो सुखी नहीं थे वे क्या बन गए, सुखी हुए, हिप्पीज थे कौन बन गए, हैप्पी, जिस अमेरिका के धन संपदा ने उनको न तो सुख न तो शांति दी, लेकिन हरि नाम को जब वे प्राप्त किए तो मन संतुष्ट हुआ, पीस ऑफ माइंड हैप्पीनेस, हिप्पी थे बन गए हैप्पी बने, हरि नाम में ऐसी क्षमता है, अमीरी में क्या पड़ा है, जो आनंद लूटे कौन फकीर, फकीर लकीर जो आनंद लूटते हैं वो आनंद ना ही अमीरी में, तो ऐसे अमीर तथा कथित अमीर देश में न्यूयॉर्क में उन्होंने क्या किया, राम नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती बिखराए उन्होंने, वहाँ गली तो नहीं होती है, आपके गांव में गली होती है, वहाँ न्यूयॉर्क में गली नहीं है, कहीं कहीं पर है, लेकिन अधिकतर बहुत बड़े अवेन्यूज स्ट्रीट्स, तो वहाँ पर प्रभुपाद ने हरि नाम का वितरण किया, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले तो इंडोर कीर्तन चलते थे इंडोर, लेकिन फिर धीरे धीरे मैदान में उतरे श्री प्रभुपाद। वैसे चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन भी इंडोर शुरू हुआ, श्रीवास अंगन, श्रीवास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु के क्या फोन है कि क्या है? एग्जैक्ट, फोन ऑफ करो, फोन क्या और किसी का फोन है? वहां पर फोन है, फोन से भी ऐसा होते रहता है। तो श्रीवास ठाकुर के घर में ही इतने महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ कीर्तन किया करते थे, लेकिन फिर जगत का कल्याण कैसे होगा? फिर अद्वैत आचार्य के विशेष निवेदन पर इतने महाप्रभु भी फिर उदिल अरुण पूर्व भागे, द्विज मणि गोरा मणि जागे, भक्त समूह लैया साथे गेलो नगर बाज। अपने भक्तों को साथ में लगे सारे नगरों में ग्रामों में चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन प्रारंभ किया। वैसे श्रील प्रभुपाद भी नाम संकीर्तन जो मैचलेस गिफ्ट नामक स्थान का जो था, हरे 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 हरे। तब श्रील प्रभुपाद टॉमकिंस स्क्वायर पार्क गए, न्यूयॉर्क का एक फेमस पार्क है टॉमकिंस स्क्वायर पार्क। तो पाश्चात्य जगत का द फर्स्ट पब्लिक जो कीर्तन संकीर्तन है वो टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में हुआ, जहाँ पेड़ के नीचे प्रभुपाद खड़े हुए, आपने देखा चित्र देखा होगा, इसको याद है प्रभुपाद एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, पता है, और प्रभुपाद थोड़ा भाषण दे रहे हैं, तो वही टॉमकिंस स्क्वायर पार्क। तो हुआ, तो ये 1965 में श्रील प्रभुपाद का जो आगमन हुआ न्यूयॉर्क में, तो उस आगमन की संस्मृति के उपलक्ष्य में ये हरिनाम का उत्सव हम लोग मना रहे हैं। और तो प्रभुपाद ने जिस भेंट का गिफ्ट जो संसार को दी, उसी गिफ्ट को हरिनाम का वितरण इस हरिनाम उत्सव के समय संसार भर में हो रहा है। नागपुर में भी, अमरावती को पता नहीं है, कुछ रिपोर्ट है हो रहा, या मैं दिल्ली में था, मैं मिडल ईस्ट में हो रहा है, मुस्लिम कंट्रीज में भी हरे कृष्ण भक्त वहाँ हरिनाम उत्सव मना रहे हैं, अफ्रीका में मैं था वहाँ भी हो रहा है, मॉरिशस में तो और बहुत बड़ी, और सर्वत्र हो रहा है, मैं जहाँ जहाँ गया था वहाँ मैं देखा ही। हुआ आज उस उत्सव का, आज और कल ये दो अंतिम दिन है। तो हुआ तो यह हम लोग ऐसे वितरण करने तो नहीं आए हैं हरिनाम को, हरिनाम का, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम की बात है। चैरिटी की कहाँ शुरुआत होनी चाहिए? अपने घर से, खुद से भी। हम औरों को तो हरिनाम देते रहते हैं, लेकिन पहले लेना भी तो होगा, देने के पहले उसे भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हरिनाम मुझे, वो हरिनाम मुझे चाहिए, वो हरिनाम मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसे ग्रंथों का वितरण करने वाले हरि भक्त, ग्रंथों का वितरण तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन ग्रंथ केवल वितरण करने के लिए प्रभुपाद ने छपे या लिखे नहीं, उसका क्या होना चाहिए? उसका अध्ययन भी तो होना चाहिए हमारे द्वारा। So not only book, distribute books, distribute books, distribute books. तो साथ में read my books, read my books, read my books भी। तो प्रभुपाद ऐसे कहा था कि मेरी कंप्लेन है, मेरी शिकायत है। क्या शिकायत? मेरे अनुयायी मेरे ग्रंथों का उतना अध्ययन नहीं करते जितना मैं चाहता हूँ, बहुत कम करते हैं। तो हम लोग वितरण तो करते हरि नाम का, लेकिन आप लो, आप हरि नाम लो, चांद हरे नाम ही वो केवल, और तुम क्या करोगे? लोका सांगे अपन कोरडे, तो ऐसा हम पाषाण न रहे, हरि नाम से हम भी अपना दिल को पिघालना पिघालना चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो हरि नाम का प्रचार करते करते फिर हम लोग गया भी, और ये विश्व हरि नाम दिवस मना मनाए भी, और अंतिम दो दिवस हम इस हरि नाम को प्राप्त या नाम नाम आश्रय हरि नाम का आश्रय हरि नाम का महिमा हरि नाम जप कीर्तन संबंधित विधि इसी के संबंधित कुछ निषेध निषेध ये करे ये ना करे डूज एंड डोंट्स कहते हैं, तो इसको थोड़ा समझने के उद्देश्य से भी इसको हुआ, या थोड़ा आत्म परीक्षण आत्म परीक्षण आत्म निरीक्षण परीक्षण इंट्रोस्पेक्शन करने के उद्देश्य से भी हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हाउ इज माई चैंटिंग, अभी हम दुबई में थे तो शायद लगभग सभी व्हीकल के पीछे एक साइन बोर्ड लगाए थे, लिखा था हाउ इज माई ड्राइविंग, हाउ इज मैं कैसा ड्राइविंग करता हूँ, अगर वो ठीक नहीं है तो मेरा फोन नंबर वही नंबर भी लिखे थे, यू कुड कॉल मी और बता सकते हो मेरा ड्राइविंग कैसा रहा, स्पीड कैसी रही, मैं लेन में ड्राइविंग कर रहा था कि जो भी विधि निषेध का पालन, जो फोन में पीछे का इस गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी वाला फोन कर सकता है, तो उसी प्रकार हम तो जब तो कर रहे कब कब से कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हो कैसा हो रहा है, ठीक से कर रहे हैं कि जो कार्य हम लोग हर रोज करते हैं उसको सावधानी से करना चाहिए, उसमें अगर गलती की तो हमने हर रोज गलती कर रहे हैं, कोई काम कभी कभी किया फिर गलत किया तो गलत है ही, लेकिन कोई कार्य हर रोज कर रहे हैं लेकिन अगर गलत किया तो फिर आज की गलती कल की गलती परसों की नरसों की तरसों की ग्रैंड टोटल कितनी हो जाएगी, बहुत भारी गलती। योगा में बताते हैं जो योगासनास वगैरह में और भी कई सारी बातें हैं जो हर रोज करने की बातें हैं, जिससे हमें जो हमारा साधन है उस साधन से ही क्या होगा सिद्धि होगी, तो साधन में ही कोई त्रुटि रही तो साध्य तक पहुंच या शायद पहुंचेंगे नहीं, या पहुंचेंगे तो देरी से पहुंचेंगे, कई जन्म जन्मांतर के उपरान, लेकिन ऐसा हम नहीं चाहते हैं। प्रभुपाद क्या चाहते थे, हम लोग अपने साधना में सिद्धि के लिए कितना समय दिए प्रभुपाद, कितने जन्मों में आप सिद्ध, तीन थ्री लाइफ टाइम्स, तो जड़ भरत के थे वन लाइफ टाइम, कितना समय हमारे पास, फिर प्रभुपाद करते जो व्यापारी होते हैं व्यापारी बनिया वगैरह, वो कभी नहीं सोचते कि व्यापारी इस जन्म में करेंगे और प्रॉफिट क्या भरोसा वो पोस्टपोन नहीं करते, व्यापार भी अभी करेंगे और नफा वगैरह जो भी इसी जन्म में ऑन द स्पॉट, तो हमें साधना में बड़ा सतर्क होना चाहिए, और हमारी मुख्य साधना तो कौन सी है, जप की साधना, हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, तो उसको तो ये एक दो दिन आज समय तो उतना पर्याप्त नहीं है, कम ही है, यथासंभव कुछ तो प्रारंभ किए हम लोग आत्म परीक्षण, इसको सिंहावलोकन भी कहिए, सिंहावलोकन करेंगे हम थोड़ा सिंहावलोकन, वो क्या होता है, सिंह तो समझ में आ गया, सिंह तो समझ में आ गया, और क्या सिंहाव अवलोकन, अवलोकन मतलब देखना, सिंह जैसे देखता है, सिंह चलता है कुछ दूर फिर रुकता है फिर देखता है कहाँ था फिर कहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, कहाँ हूँ अब, कहाँ तक मुझे जाना है, कैसे जाना है, स्टॉप थिंक एंड देन प्रोसीड, ऐसा भी
एडवाइस होता है, थोड़ा रुको, सोचो, रिव्यू करो, अवलोकन, सिंहावलोकन, परीक्षण करो अपना परफॉर्मेंस का और फिर आगे बढ़ो। तो थोड़ा सिंहावलोकन, वैसे गर्मी भी है ना, कोई बताने अलग से बताने की आवश्यकता तो नहीं है। मैंने सुना था कि पंखे वगैरह लगेंगे, लेकिन और ये क्या, कुछ पानी वगैरह रखो साथ में, मुंह नहीं तो आंखें तो, या कान भी वैसे, या भी जल लगाने से थोड़े, यस हियर, या फिर खड़े हो सकते, थोड़ा कोई नींद आती है तो कुछ माताओं के पास पानी है शेयर करो। प्रीति लक्षणम, सारा ठप है आज, शांति है, हवा का भी माइंड के लिए अच्छा है, पीस हो, लेकिन नींद आ जाती, पीस हो तो प्रयास करो, समय वैसे भी कम है, आधा समय तो नींद निद्रा में चला गया तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, तो देखो क्या क्या कर सकते हो। पानी पिलाओ सबको, थोड़ा जल की सेवा, ड्रिंक सम वाटर, या पीछे कुछ पानी भर के रख भी सकते हैं, थोड़े ही भक्त जाए सभी okay, तो हुआ। तो हरिनाम, हरिनाम में श्रद्धा नहीं होना भी क्या है, एक अपराध है, हरिनाम में श्रद्धा नहीं है। तो हरिनाम में श्रद्धा बढ़ाने के लिए एक तो हरिनाम का महिमा, अगर हम अधिक सुनेंगे हरिनाम का महिमा तो हमारी श्रद्धा बढ़ सकती है। तो हरिनाम का महिमा को बढ़ाने वाले, विस्तृत करने वाले कई सारे व्यक्तित्व है, साधु शास्त्राचार्य है, लेकिन सभी में अग्रगण्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। अगर हम चैतन्य महाप्रभु को समझ सकते हैं तो उसी के साथ हम हरि नाम का महिमा भी समझेंगे। ये हरि नाम महिमा की स्थापना कहो, या हरि नाम युग धर्म की स्थापना कहो, इसकी स्थापना करने हेतु ही तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पधारे थे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, फिर पुनः वही बात आप सभी को, जो गौड़ीय वैष्णव, आप तो पहले तो कहा था कि आप वैष्णव हो, फिर अभी और एक इसका वैशिष्ट विशेषण, कैसे वैष्णव आप हो, गौड़ीय वैष्णव। तो बंगाल को गौड़ देश कहते हैं, गौड़ देश, गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रोषम दो तमोनुदो। तो गौड़ देश में चैतन्य, गौड़ देश मतलब बंगाल, क्या वैसे उत्तर भारत को एक समय पंच गौड़ कहा करते थे और दक्षिण भारत को पंच द्रविड़ कहते थे, आज भी द्रविड़ देश कहते थे। तो दक्षिण में पंच गौड़, उत्तर में पंच गौड़, दक्षिण में पंच द्रविड़, तो बंगाल एक गौड़ देश। तो चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हुए, गौरांग महाप्रभु गौड़ देश में, तो उनसे जो परंपरा प्रारंभ हुई उस परंपरा का नाम हो गया गौड़ीय वैष्णव परंपरा, गौड़ीय वैष्णव। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम महात्म्य की भी स्थापना की और उसके लिए बहुत स्वयं भगवान स्वयं ही कीर्तन किए। अभी हम गा रहे थे प्रातः काल में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उठते ही क्या करते, अपने भक्तों को साथ में लेके निकलते, थथाई थथाई बाजे ल खोल, और झांझ खोल बज रहा है और कीर्तन होता था, चैतन्य महाप्रभु मध्य में या सभी से आगे, और प्रेमे ढल ढल सोनार अंग चरने, चरणों में नुपुर बांध के चैतन्य महाप्रभु क्या करते, कीर्तन करते। जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो श्री कृष्ण इन अष्ट सखियों के साथ गोलोक में रास क्रीड़ा करते हैं, देख रहे हैं ना, थोड़ा देखिए देखिए, थोड़ा ऑडियो विजुअल भी हो जाएगा, हमारे पास कोई स्लाइड शो वगैरह नहीं है, लेकिन यह शो तो आपके समक्ष है। तो थोड़ा आंखें भी खुल जाएगी। देखिए 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 जैसी जैसी देखने की चीज है, देखते रहो। तो कृष्ण वृंदावन में राधा भी साथ है, सखिया है, गोपिया है, ऐसा नृत्य करने वाले रास क्रीड़ा, और समय भी कीर्तन होता था, कीर्तन और वाद्य बजते हैं। रास क्रीड़ा जब होती है उस समय भी वाद्य बजते हैं, गायन होता है। तो बेस्ट म्यूजिक इस संसार वो संसार का सबसे बढ़िया संगीत जो होता है रास क्रीड़ा के समय, जो संगीत और वाद्य बजते हैं। और राधा रानी स्वयं ही कुशल गायिका भी है, वाद्य बजाती है, यह भी कई सारे वाद्य लेके वाद्य है इनके हाथों में। तो ये 5000 वर्ष पूर्व का दृश्य है। तो यही कृष्ण बीच में जो राधा कृष्ण है ना, देख रहे हो, तो दोनों के एक हो गए। यहाँ तो दो है, 5000 वर्ष पूर्व दो थे, 500 वर्ष पूर्व कितने हो गए, दो के एक। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं आया। तो राधा रानी का रंग देखिए कैसा है, गौर वर्ण की राधा रानी है। तो अंतः गौरा बहिर ना, बहिर गौरा अंतः कृष्ण। तो गौरांग महाप्रभु के रूप में बाहर है राधा, राधा की कांति, राधा का रंग और राधा का भाव, और अंदर कृष्ण छिपे है। तो दो के एक हो गए, तो कृष्ण थोड़े मध्य में आ गए, बीच में आ गए, और बाहर से राधा का रंग भाव दिमाग में भाव है राधा का, और कांति है बाहर, और कृष्ण है, कृष्ण ही अनुभव कर रहे राधा होने का अनुभव राधा भाव से। तो उस लीला में पुनः वे नृत्य कर रहे हैं, 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो पुनः उनका नृत्य चल रहा है, लेकिन नृत्य अब संकीर्तन के साथ नृत्य कर रहे हैं। कीर्तन महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्यमाद्यन मनसो रसेना। महाप्रभु का महाप्रभोर कीर्तन, महाप्रभु कीर्तन नृत्य, नृत्य समझ लो, वादित्र मतलब वाद्य, हरी वो। तो वह तो महाप्रभु ने अब कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, और इस संसार के लोगों को उस संकीर्तन में जोड़ रहे हैं। तो अब हमारी लगता है उस आइडिया का टाइम आया है हमारे लिए, और हमारा प्रवेश अब हमारा स्वागत हो रहा है। पधारिए पधारिए, आइए, किस में आइए, संकीर्तन में आइए। तो इस प्रकार जो लीला ऐसे गोलोक में भी जो नवद्वीप है, और यहाँ पर भी नवद्वीप है, उसी का विस्तारित धाम कीर्तन होता है। और हम भी जब कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम फिर इस संसार में नहीं रह जाते। जब हम कीर्तन करते हैं और साथ में नृत्य भी करते हैं, मतलब यह शरीर हिलता है डुलता है, भाव में आता है, ये शरीर को नृत्य करना पड़ता है। नृत्य पहले कौन, आत्मा नृत्य करता है, कीर्तन में नृत्य किसका होता है, आत्मा का। मैरिज पार्टी में जो नृत्य होता है इसका शरीर का। तो नृत्य पार्टी में जब जो भी नाचता है शरीर, तो उस समय आत्मा को उल्टी होती है, आत्मा उल्टी करता है, उसमें सम्मिलित नहीं होता, उसके लिए तो वो विष है। आत्मा तो भूखा है प्यासा है, किसका भूखा प्यासा है, आत्मा हरि नाम का, हरि का, हरि के लिए प्यासा है भूखा। अखिया प्यासी रे, आंखें प्यासी है, कान कब से उत्कंठित है, कान से उस आत्मा का भी कान है, आत्मा का भी आंखें है, आत्मा का सब कुछ है। ये भी आपको ABC है, उसे आध्यात्मिक ज्ञान की ये प्रारंभिक ज्ञान है, आत्मा का अपना रूप है। तो हम जब कीर्तन में जब नृत्य करते हैं, वो नृत्य तो आत्मा का नृत्य है, और फिर शरीर साथ देता है, नृत्य तो आत्मा का है। तो वह कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री राधा कृष्ण पधारे और उन्होंने कीर्तन नृत्य किया। तो 500 वर्ष पूर्व किया हुआ हरे जो नृत्य है और कीर्तन का, और चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन और नृत्य करके इस संसार में जो वाइब्रेशंस लहरे तरंगे जो उठी महाप्रभु के कीर्तन और नृत्य से, वही आज भी हमको क्या कर रही है, देखते आपको समझ में आया कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या कर रही है, हमको भी हिला रही, हमको भी डुला रही है। 500 वर्ष पूर्व आज भी हो रहा है उनका कीर्तन, नित्य लीला है। लेकिन प्रकट लीला में जो कीर्तन हुआ, वही कीर्तन हमारे कीर्तन का कारण, वही नृत्य हमारे नृत्य का कारण, सर्व कारण कारणम। तो ऐसा जबरदस्त कीर्तन किया, संसार को हिलाया डुलाए, पृथ्वी हिलती थी, ऐसा वर्णन आया। चैतन्य महाप्रभु जब अपना उदंड नृत्य करते, उदंड नृत्य करते आकाश में उड़ान, और फिर पुनः जब कर लैंडिंग हो जाता पृथ्वी पर, तो पृथ्वी हिलती, तो उस समय का जो कंपन पृथ्वी में भी हुआ होगा, वही हमें आज भी खिला रहा है, डुला रहा है। रेजोनेंस, रेजोनेंस आप स्टडी किए, रेजोनेंस होता है, एक वस्तु को आपने उसमें कुछ कंपन उत्पन्न किया तो बगल में दूसरी वस्तु है वो भी हिलने लगती है, उसने तो आपने स्पर्श भी नहीं किया, आपने यहाँ कहीं हैमर से कुछ थोड़ा उसको हिट पीटा तो वो हिलने लगता है, तो बगल वाली वस्तु भी क्या करती है, हिलने लगती है, इसको रेजोनेंस कहते हैं। कई सारे वाद्यों में भी कई जो स्ट्रिंग्स होती है तो एक को बजाने से बगल की भी वाइब्रेट करने लगती है। तो 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु जहां भी है, चैतन्य महाप्रभु आज भी कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे, वही हमें भी आज हिलाता है, डुलाता है, और इस प्रकार हम भी उसी लीला के अंग हम भी बन जाते हैं। इस संसार का हमारी जो लीला है, हमारा जो खेल है, वो ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, और भगवान की ओर सन्मुख होके दुनिया की ओर विमुख, दुनिया से विमुख, भगवान से सन्मुख होते हैं हम, जब हम कीर्तन और नृत्य करते हैं या जप करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी जप किया वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु गए वृंदावन, तो यमुना के तट पर या कालियदह है ना, कालियदह हम सुना होगा, देखे आप वृंदावन गए, कोई वृंदावन गए, कौन कौन वृंदावन गए, अच्छा गए बढ़िया, अधिकतर वृंदावन गए। तो कालियदह के पास ही इमली तला करके, इमली का एक वृक्ष, प्राचीन वृक्ष अभी अभी था वैसे, कुछ साल पहले वो बूढ़ा वृक्ष अंतर्धान हुआ, उस स्थान पर एक नया इमली का पेड़ तो उगाया है, तो उस पेड़ के नीचे 500 वर्ष पूर्व वो वृक्ष था। तो चैतन्य महाप्रभु वहां बैठ के एक समय जप कर रहे थे, बड़ा सीरियस चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। जब जप के लिए बैठे थे तो वे गौरांग थे, लेकिन जब जप करने लगे ध्यान पूर्वक, तो जप करने का उद्देश्य वैसे कृष्ण भावना भावित होना, टू बी कृष्ण कॉन्शियस, ये उद्देश्य। तो गौरांग महाप्रभु जब कृष्ण कॉन्शियस हुए तो उनका रंग में भी परिवर्तन हुआ, वो गौर वर्ण के नहीं रहे, कैसे हुए, श्याम वर्ण के, जैसे बलराम कहते, बलराम वृंदावन के कई स्थानों पर बलराम, जैसे गौर वर्ण या शुक्ल वर्ण के बलराम, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं तो उनके अंग का रंग भी परिवर्तित होता है।